आएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा पहले ढूंढो तुम उसकी राजबाजी।
कादर मुतलिक, खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। खुदा के पाक कलाम में से खुदा की बादशाही के मज़मून को सीखते हुए पिछले हफ्ते हमने ये बात सीखना शुरू की कि खुदा की बादशाही में हम क्या नहीं करेंगे, कौन सी चीजें हैं जो हमें वहां नहीं करनी होंगी। पहली बात जो हमने सीखी वो ये थी कि हम वहां पर शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। दूसरी बात ये सीखी कि जो वहां बादशाही में शामिल होंगे वो बादशाही से बाहर रहने वाले लोगों को मदद नहीं दे सकेंगे। कोई भी अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी अजीज को किसी भी तरह से सिफारिश करके, कोई तरला मिन्नत करके, कोई रिक्वेस्ट करके, कोई रिश्वत देकर उसमें शामिल नहीं कर सकेगा। फिर हमने यह सीखा कि वहां पुरानी यादें ना होंगी। जो बातें इस जमीन पर हमें दुख देती, तकलीफ देती, परेशान करती हैं, हमारी तल्ख यादें हैं, बिटर मेमोरीज हैं, वो वहां पर हमारे यहां साथ नहीं होंगी। हम वो बातें जो हमें दुख देती, परेशान करती हैं, वहां हम उन्हें याद नहीं रखेंगे। और फिर चौथी बात खुदा के कलाम में से जो हमें सीखने को मिलती है कि वहां हम मातम या आहुनाला ना करेंगे, हम किसी बात के लिए रो चिल्ला नहीं सकेंगे, हमें कोई दुख नहीं होगा, हमें सदमा नहीं पहुंचेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। वजह, क्योंकि वो जिंदगी कामिल है, वो जिंदगी खुशी और शादमानी की है, वो जिंदगी कामिल जिंदगी है, वो कसरत की जिंदगी है, उसमें बीमारी नहीं है, उसमें लाचारी नहीं, उसमें एबनॉर्मैलिटी नहीं है, उसमें कोई रोग और तकलीफ नहीं, उसमें कोई दर्द नहीं है, उसमें किसी की तरफ से हमें कोई ठेस नहीं लगेगी कि हम उस ठेस के लगने से दुखी हों और हम रोएं। वहां कोई हमारा अजीज वफात नहीं पाएगा, कोई डेथ नहीं होगी कि जिसकी बिना पर हम मातम करें। वो जिंदगी ऐसी है कि जो खुशी और शादमानी की है, उसमें हम मातम नहीं कर सकेंगे, उसमें हम रो और चिल्ला नहीं सकेंगे, उसमें हम आहो नाला और फरियाद नहीं कर सकेंगे, हमारे किसी भी तरह से मुश्किल और परेशानी की हालत नहीं होगी जिसमें हम चिल्लाएं और सर पे बाजू रख के और मातम करें और फिर बैन करें। हम वहां रो चिल्ला नहीं सकेंगे, खुदावंद हमारे सब आंसू पहुंच देगा, वहां ना मौत होगी, ना आहो नाला, ना दर्द, कोई दुख नहीं होगा। हम वहां ये काम नहीं कर सकेंगे। इस जमीनी जिंदगी में कई लोग बड़े मास्टर होते हैं, जरा सी बात पे रो देना उनकी आदत हो जाती है और वो सामने वालों को इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं अपने आंसुओं से। आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि जो लोग आंसू बहा रहे हैं उनके दिल में बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है और वो बड़ी तकलीफ सह रहे हैं, इसीलिए उनके आंसू बह रहे हैं और वो अपने आंसुओं को इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रिक। और ऐसे आंसुओं को उर्दू जबान में क्या कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू, बहाने के, धोखे के आंसू। जब कोई अजीज फौत हो जाता है तो उस पर ऐसे ऐसे बैन किए जाते हैं, ऐसा मातम किया जाता है कि पता चलता है कि ये जो बैन करने वाली खवातीन हैं स्पेशली, उनके लिए सारी दुनिया जहान का मरकज और महवर वही शख्स था जो चला गया। और अगर कोई तहकीक करे तो पता चलता है कि इसके मरने से 2 घंटे पहले तक उसे गालियां दी जा रही थी, उसे हर तरह की बुराई कही जा रही थी, उसको कहा जा रहा था तू कब हमारी जान छोड़ेगा, कब हमारी मुश्किलें आसान होंगी, तेरी खिदमत करते करते हमने यहां तक नौबत आ गई, हमारे ऊपर कर्जे चढ़ गए, हम तेरा इलाज कराते कराते थक गए, हम परेशान हाल हो गए। लेकिन जैसे ही मौत हो जाती है वहां बड़ा एक ड्रामा सीन हो जाता है और ऐसे जाहिर किया जाता है कि हमसे ज्यादा किसी और को दुख ही नहीं। और ये बात मैंने सिर्फ सुनी नहीं, मैंने खुद देखी है, मेरे अपने तजुर्बे, मेरे अपने मुशाहदे, मेरी ऑब्जर्वेशन में है। वो बहू जो अपनी सास का कपड़ा तक धोने को कभी गवारा नहीं करती थी, उसे रोटी पका के देने से तंग थी, जब सास की डेथ हो जाती है तो उसने सबसे पहले सर पे कपड़ा बांधा हुआ, रो रो के हलकान, मैं खिदमतें करते करते थक गई, अब हमारे घर में कौन हमारे लिए बरकत का वसीला होगा, बुजुर्गों के होने से कितनी बरकत होती है, मैंने कितनी खिदमतें की फिर भी तू बाज ना आई, तू चली ही गई। मैंने खुद देखा, लोग इस जमीन पर मातम करते हैं एक इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन वहां आसमान पर यह ट्रिक किसी के काम नहीं आएगा, वहां मातम आहोनाला रोना चिल्लाना दर्द से कराहना नहीं होगा, क्योंकि वहां हकीकी जिंदगी है जो हर तरह की बीमारी, दुख, मुसीबत, तकलीफ, दर्द और यहां तक कि मौत से पाक है। वहां हम मातम और आहोनाला नहीं कर सकेंगे। फिर वहां हम एक ये काम नहीं होगा, लोग अक्सर किसी जगह खाने पीने के लिए जाएं तो कहते हैं नहीं स्वाद ना खादा ही नहीं गया, मजा ही नहीं आया, इंजॉय ही नहीं कर सके, किसी ने खाना ही नहीं दिया, खाना ऐसा था दिल ही नहीं किया, घर आके दोबारा से खाना पड़ा या रास्ते में हमें किसी रेस्टोरेंट से होटल से खाना पड़ा, मुतमईन ही नहीं होते, आसूदा ही नहीं होते, फेलोशिप दे दो किसी स्नैक्स वाली, लो हर बार यही, बिरयानी के ले आओ हर बार बिरयानी, बदल के कोरमा ले आओ हर बार कोरमा, अब इसमें मीठा है, अब इसमें सख्त है, अब ये घुल गया है, इसमें मिर्च तेज हो गई, इसमें नमक तेज हो गया, वी आर नेवर सेटिस्फाइड। और घरों में भी आदतें होती है ना, क्या होता है ये आटा गोंदी हेल्दी क्यों, वजह क्या है कि सिर्फ हमने तनकीद बराए तनकीद करनी है और कोई ना कोई पॉइंट निकालना है डिससेटिस्फेक्शन को जाहिर करने के लिए कि हम मुतमईन नहीं हैं, हम आसूदा नहीं हैं, कमी है। सारी सारी उम्र अपने शौहर के साथ, अपने खानदान में बच्चों के साथ औरत गुजार देती है और बिलाखिर भी कहती है तंग ही रही है सारी जिंदगी, और आदमी भी सारी जिंदगी के बाद गुजारने के बाद कहेगा तेरे साथ वो कौन सा दिन था जब मैंने कौल इकरार किए थे, कब तू मेरे मथे लगाई गई थी। डिससेटिस्फेक्शन, मुतमईन ना होना, तसल्ली ना पाना, अपने असूदगी से खाली रहना कि मैं मुतमईन नहीं हो पाया सारी जिंदगी मेरे नाल कीता की, मेरे साथ क्या जुल्म किया, मैं मुतमईन नहीं हो पाया। आसमान की बादशाही में खुदा के यहां जब हम पहुंच जाएंगे हम फुली सेटिस्फाइड होंगे, हम वहां यह नहीं कह पाएंगे कि मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं आसूदा नहीं हूं, मेरा दिल अभी भी किसी और चीज के लिए तलबगार है। इंसान जमीन पर रहते हुए मुतमईन नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं रहता, हर चीज में वो कमी तलाश करता और कहता है नहीं ये इत्मीनान बख्श नहीं है, मुझे इससे आसूदगी और तसल्ली नहीं मिली। लेकिन आसमान की बादशाही में हम ये नहीं कह पाएंगे, हमें मुतमईन रहना होगा, हमें आसूदा रहना होगा, हमें तसल्ली रखनी होगी कि जो कुछ हमें मिल चुका है वो काफी है, जो बर्रा है वो हमें भूखा और प्यासा नहीं छोड़ेगा, हमें कभी किसी चीज की तलब बाकी ना रहेगी। यही बात जबूर नंबर 23 में पहली आयत में दाऊद ने कही, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। मैं डिससेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, मैं आसूदा हो जाऊंगा, मैं एकॉम्प्लिशमेंट फील करूंगा अपने आप में, मैं सेटिस्फेक्शन फील करूंगा। कुछ भी किसी को लेकर दे दो, लोग यही कहते हैं ये कोई गिफ्ट है हमें देने के लिए। कुछ भी दे दो किसी को, शादियों में अक्सर होता है ना, लोग कपड़े देते हैं, पाकिस्तान में तो आम है, पाजी के तौर पर, ये दुल्हे का जोड़ा, ये दुल्हन का जोड़ा, ये जी मां का जोड़ा, ये बाप का, ये भाई का, ये बहन का, और कभी कभी बहनोई का भी होता है। तो अक्सर वो जो बड़े होते हैं ना, जरा बनने वाले, वो कहते हैं ले मैं हो जा पाना, मुझे कैसा कपड़ा लेके दे दिया, उन्हें नहीं पता मैं कैसे कपड़े पहनता। हम मुतमईन नहीं होते, कोई भी हमें कोई पोशाक दे दे, हमें कोई गिफ्ट दे दे, हमें पसंद नहीं आता, हम मुतमईन नहीं होते। सिर्फ आदमियों की बात नहीं, औरतें भी ये काम करती हैं कि वो किसी का दिया हुआ इतनी जल्दी पसंद नहीं करती। वलाए देना तो पैसे दे दें दे। असी आप ही लाए होंगे, और फिर वो खरीद के जब लाएंगे तो फिर कहेंगे नहीं वो वाला जो छूट गया है ना, अगली बार वही लेना है, ये कोई इतना मजेदार नहीं है, वो जो छूट गया है ना ऐसे ही बस तेरे साथ ध्यान लगी लगी मैंने छोड़ दिया, अगली बार वही लेना है। हम मुतमईन नहीं हैं इस जिंदगी में, लेकिन आने वाले जहान में हम मुतमईन होंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे। हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम आसूदा नहीं हैं, हम मुतमईन नहीं हैं, हम गैर मुतमईन नहीं रह सकते वहां पर। और अगर किसी को आदत है जमीन पर यही कहने की मैं मुतमईन नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नहीं मेरे दिल के मुताबिक नहीं है, तो इस आदत को छोड़ दें। वहां पर यह आदत जाएगी ना नाक चढ़ाने की, तो नाक चढ़ाया नहीं जाएगा वहां पर, वहां नाक चढ़ाने वाले को पसंद नहीं किया जाएगा। जो कुछ जिंदगी में मिलता है उस पर मुतमईन रहें, जो खुदा आपकी जिंदगी में लेके आ रहा है उस पर आसूदा रहें, उस पर खुश रहें, क्योंकि आसमान की बादशाही में हमें यह मौका नहीं मिलेगा कहने का और इजहार करने का मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं आसूदा नहीं हूं, नहीं मुझे पसंद नहीं आया, मुझे और कुछ चाहिए। नहीं, अभी से मुतमईन होना सीख जाएं, शुरू करें, और फिर वहां पर हमारा अपना कोई एजेंडा कोई मंसूबा नहीं होगा कि हम कहें अच्छा चलो खुदा की बादशाहिया लेकिन राज मेरा होगा, मेरी मर्जी चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब्दी की बीवी याकूब और योहन्ना जो रसूल हैं खुदावंद यस्सु के, उनकी मां खुदावंद यस्सु के पास आती है और यस्सु उसकी मौजूदगी का एहसास करता है, उससे कहता है कि बोल तू क्या चाहती है मुझसे। उसने कहा यही कि तेरी बादशाही में एक बेटा मेरे एक मेरा बेटा तेरे दाहने हो और दूसरा तेरे बाएं हो। उसने कहा तू जानती नहीं कि क्या मांगती है, ये काम मेरा नहीं बाप ने जिन के लिए मुकरर किया है उन्हीं के लिए है, तू ये चाहती है कि मैं तेरे बेटों को अभी से ये गारंटी दे दूं कि वही मेरे दाहने और बाएं बैठेंगे और उनकी मर्जियां अभी से उस बादशाही में पूरी होंगी, तो ये नहीं हो सकता। हमारी पर्सनल चॉइसेस और एजेंडे नहीं होंगे वहां पर, वहां पर हमें वही मंसूबा वही प्लान वही एजेंडा बरुएकार लाना होगा, इस्तेमाल करना होगा, अमल में लाना होगा जो कि खुदा का है। मुकाशवा की किताब का बाब नंबर 14 और आयत नंबर 4, ये वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। खुदा के लोग जब बादशाही में जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से इधर उधर भाग दौड़ और ऊपर नीचे आना जाना और शुगल मेला और मस्ती और अपनी मर्जी की बैठकें और मजलिसें नहीं कर सकेंगे, अपने प्लान्स और मंसूबे नहीं होंगे। वो वही करेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह चाहेगा वो वही करेंगे। इंसानों का अपना कोई प्लान कोई मंसूबा कोई एजेंडा नहीं होगा वहां पर, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, जहां वो ले जाए वहीं जाना होगा, जहां वो बिठा दे वहीं बैठना होगा, जहां वो खड़ा कर दे वहीं खड़े रहना होगा, जिस काम का वो हुक्म दे दे वही काम करना होगा। वो ये कहेगा कि गाओ तुम जो छोटे हो खा बड़े, सब हम्द गाओ तो हमें गाना होगा। वो कहेगा साज बजाओ तो हमें साज बजाने होंगे। वो कहेगा कि आप झुको और सिजदा करो तो हम तख्त के सामने झुकेंगे और सिजदा करेंगे। वो कहेगा कि तुम इन चरागाहों पर बैठ जाओ तो हमें बैठना होगा। वो कहेगा कि राहत के चश्मों के पास मेरे पीछे पीछे चले आओ तो हमें चलना होगा। हम ये प्लान नहीं कर सकते, अच्छा तू ये दाएं हाथ वालों को तो ले जा अदारी पार्क में, और मैं और ये बाएं पार्टी जो है ना, ये हम अरीन पार्क में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, हमारे एजेंडाज नहीं होंगे, हमारे प्लान्स और हमारे मंसूबे वहां काम नहीं कर सकेंगे। हम वहां अपना प्लान रख ही नहीं सकते। हमारा कोई मंसूबा नहीं होगा, वहां खुदावंद का मंसूबा होगा, जो वो हमें हिदायत देगा, हुक्म देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, इशारा देगा, हम वो ही करेंगे। वहां हमारा कोई प्लान, कोई एजेंडा, कोई पर्सनल मंसूबा नहीं होगा। और वहां हम किसी से खौफ ना खाएंगे। हर एक घर में दरवाजे होते हैं, है ना, सब घरों में, चाहे वो लेबर कैंप है, चाहे वो आपका फ्लैट है, चाहे वो विला है, हर एक रिहाइश गांव में, यहां तक कि यहां खुदा के घर में भी दरवाजे हैं, और दरवाजों को लॉक लगाए जाते हैं। किस लिए? हिफाजत के लिए, तहफ्फुज के लिए। चिड़ियाघर में जाएं, जू में, तो वहां जानवर, शेर से लेकर चूहे तक, उन्होंने पिंजरों में हिफाजती दीवारों के पीछे रखे होते हैं। किस लिए? कि वो इंसानों को, वो लोगों को या एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन आसमान की बादशाही का जो नक्शा खींचा गया है, नए आसमान और नई जमीन का जो नक्शा खींचा गया है बाइबल में, यसाया बाब नंबर 11 में और यसाया बाब नंबर 65 में, वहां पर यह है कि खतरनाक और खूनखार जानवर, जिन्हें हम इस जमीनी जिंदगी में बड़ा खूनखार समझते हैं, बड़ा दहशतनाक समझते हैं, फाड़ने वाले समझते हैं, और वो जो बहुत कमजोर हैं, वो सब एक साथ एक जगह इकट्ठे होंगे, और कोई किसी को धमकाएगा नहीं, कोई किसी को डराएगा नहीं, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाएगा, कोई किसी को हलाक ना करेगा, और नन्ना बच्चा उनकी पेशरोई करेगा, उनको लीड करेगा, और छोटा बच्चा सांप अफई के बिल में, उसके सुराख में हाथ डालेगा, और उसे वो सांप, वो अफई ना काटेगा। शेर और बर्रा एक जगह इकट्ठे होंगे। शेर तो कभी नहीं छोड़ता भेड़ के बच्चों को, बर्रों को, उसको तो बहुत सॉफ्ट गोश्त लगता है, वो कभी नहीं छोड़ता, लेकिन खुदा की बादशाही में वो खूंखार जानवर और दरिंदे भी कमजोर तरीन इंसानों को और दूसरे जानवरों को नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। कई लोग सवाल करते हैं मुझसे कि क्या आसमान की बादशाही में जानवर होंगे? ये दो हवाला जात हैं जिसमें मुझे ये क्लू मिलता है कि उस नए आसमान और नई जमीन पर खुदा अपनी मखलूकात बनाएगा और उस जमीन को संवारेगा, खूबसूरत बनाएगा इनकी मौजूदगी से, बिल्कुल वैसे जैसे बागे अदन में वो सब कुछ था। लेकिन उनमें एक दूसरे की मुखालिफत और दुश्मनी और झगड़ा और फाड़ना और नोचना और जिबा करना और खाना शामिल नहीं था। और गहराई से मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं बता सकता कि कौन सा जानवर वहां होगा, कौन सा नहीं होगा, लेकिन यह क्लू खुदा के कलाम में से मुझे मिलता है कि नए आसमान और नई जमीन में शेर और बर्रा, भेड़िया भी, सांप भी, बच्चे भी शामिल होंगे। मतलब वहां पर जानवरों की मौजूदगी का कुछ निशान मिलता है हमें, लेकिन होगा नए आसमान और नई जमीन पर, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि देख मैं एक नया आसमान और एक नई जमीन बनाऊंगा। तो जब नई जमीन तैयार करेगा तो उसमें फिर मखलूकात बसाएगा। اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات اس میں ہوں لیکن ان کی نیچر اب کے جیسی نہ ہو کہ جیسی اب وہ پھاڑنے والے، ستانے والے، مارنے والے اور ہلاک کرنے والے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں تالوں کی، لاکس کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں پنجروں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں گنز کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم وہاں کسی سے خوف نہ کھائیں گے، ہم نڈر ہوں گے، ہم فیئر لیس ہو جائیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا ہمیں، ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ہم بہادر ہوں گے، دلیر ہوں گے، جرت والے ہوں گے۔ اور پھر وہاں ہم دوسروں کی موجودگی پر اور ان کی پوزیشن پر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ وی کین ناٹ آبجیکٹ دا پریزنس اینڈ دا اسٹیٹس آف ادرس دیئر۔ زمین پر ہم اعتراض کرتے ہیں، سیاست دانوں سے شروع کر لو، وہ کیوں بن گیا وزیر اعظم، وہ کیوں بن گیا وزیر اعلیٰ، وہ کیوں بن گیا صدر، وہ دھاندلی سے بنا، اس نے غلط کیا، وہ کرپٹ ہے، وہ کیوں بن گیا، مجھے آبجیکشن ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے کہ وہ کیوں تخت پر بیٹھا ہے، وہ کیوں نیچے کوائر میں ہے، وہ کیوں ساز بجانے والوں میں ہے، وہ کیوں برے کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہ کیوں برے کے دائیں بائیں ہاتھ بیٹھا ہے، کیوں اس کو وہ سہرا دیا گیا جو مرجھانے کا نہیں، کیوں اس کو سونے کا تاج پہنایا گیا، کیوں اس کو زندگی کا تاج دیا گیا۔ پہلے میں یہ بات تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں کئی لوگوں کے مقام اور رتبے دوسروں سے زیادہ ہوں گے۔ جو 24 تخت ہیں ان پر 24 بزرگ بیٹھے ہیں، نہیں معلوم کہ ان 24 بزرگوں کے نام کیا کیا ہیں، اربوں اور کھربوں کی تعداد میں سے اگر وہ 24 الگ بنائے گئے ہیں، انہیں الگ مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، تو میں اور آپ مل کر ان 24 پر اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ تو نے ان کو کیوں اونچی جگہوں پر بٹھایا اور ہمیں کیوں یہاں نیچے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں بھائی جوزف یا بھائی پولوس کی موجودگی پر اعتراض کروں، او خداوند یہ تو بڑے برے لوگ تھے، انہوں نے زمین پر کتنے گناہ کیے، کتنی خرابیاں کی، بہت لوگوں کو ستایا، بڑے لوگوں کو انہوں نے ٹھگا، ان کے نقصان کیے، ہر طرح کا گناہ اور خرابی ان میں تھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر بھائی پیٹر یا بھائی دیس یا بھائی گرومیل وہاں اعتراض کرے، لایا تو ہے ہی بڑا کرپٹ پادری سے، انہیں تو دنیا کا کوئی پیڑا کم چھڑیا ہی نہیں، تو اے تھے کہ میں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی پر اعتراض کروں کہ یہ کیوں وہاں پر ہے اور کوئی میرے اوپر اعتراض کرنے والا آ جائے، خدا ایسا موقع نہیں دے گا وہاں پہ کہ ہم کسی پر اعتراض کر سکیں کہ مائی لارڈ وائی ہی از دیئر، اب اگر یہ یہاں ہے تو میں نہیں ہوں، ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، ہم احتجاج نہیں کر سکیں گے، ہم اعتراض نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی پوزیشن کو چیلنج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی اور کی پوزیشن کو چیلنج کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری پوزیشن اور ہمارے مقام اور ہماری موجودگی کو بھی چیلنج کر دے۔ اور اگر خداوند عدل کرے، وہ جسٹس کرے، وہ انصاف کرے، تو کوئی اس کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم کیوں وہاں پر اعتراض نہیں کریں گے؟ کیا بنیاد ہے کہ ہم وہاں اعتراض نہیں کریں گے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں لوگوں کی موجودگی یا ان کی پوزیشن پر اعتراض نہیں کر پائیں گے؟ پہلی بات، وہاں ہم خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانیں گے۔ اور خدا کا فضل کیا ہے؟ میں کلیسیا کو کئی بار یہ بات سکھا چکا ہوں، خدا کا رحم، the mercy of God، یہ ہے کہ جس چیز کے ہم حقدار ہیں وہ ہمیں نہ دی جائے۔ مطلب جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں سزا ملے، لیکن خدا ہمیں سزا نہیں دیتا، یہ اس کا رحم ہے، اس کی مرسی ہے۔ اور فضل یہ ہے کہ جس چیز کے ہم حقدار نہیں ہیں وہ خدا ہمیں دے دیتا ہے۔ مطلب کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے حقدار نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اس قابل کہاں کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، ہم اس قابل کہاں کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہم اس قابل کہاں کہ اس کے پاک پہاڑ پر جا کر ہم کچھ مانگ سکیں۔ اور ہمارے ان ایبل ہونے کے باوجود، ہمارے ناقابل اور نا اہل ہونے کے باوجود، خدا ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کرے، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور وہاں ہم خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ خداوند میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے مجھے اپنی بادشاہی میں شامل کیا، یہ تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے. اسی طرح دوسرے لوگ بھی وہاں اسی بنیاد پر جمع ہوں گے جیسے میں وہاں پہنچایا گیا ہوں. جب مجھے خدا اپنے فضل سے وہاں پہنچائے گا تو دوسروں کو بھی اپنے فضل ہی سے پہنچائے گا. ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے ایک پیمانے سے ناپو لیکن دوسرے کو دوسرے پیمانے سے ناپو، یہ ہو نہیں سکتا. خدا کے ہاں طرفداری نہیں، اس کے ہاں دو پیمانے نہیں. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ناپے جاؤ گے. ہم خدا کے فضل کو سچے طور پہچانیں گے کہ اگر اس نے مجھ پر فضل کیا ہے تو دوسروں پر بھی اس نے فضل کیا ہے. سو میں اس کے فضل کو چیلنج نہیں کر سکوں گا. دوسری بات کہ ہم کیوں اعتراض نہیں کریں گے، ہم وہاں مسیح کے جیسا مزاج رکھیں گے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہمیں حکم ہے کہ یسوع کے جیسا مزاج رکھیں. اور یوحنا اپنے پہلے عام خط میں یہ بات واضح کرتا ہے تیسرے باب کی دوسری آیت میں کہ جیسا وہ ہے ہم بھی ویسے ہوں گے، جیسا ہمارا خداوند ہے وہاں ہم بھی ویسے ہوں گے. خداوند کے جیسا مزاج ہو جائے گا ہمارا، اس کے جیسا مائنڈ، اس کے جیسی سوچ ہو جائے گی ہماری. اور جب خداوند یسوع ہم گناہگاروں اور ناراستوں اور بدوں اور قصورواروں کو وہاں شامل کرے گا تو ہم یہ بات جان لیں گے کہ دوسرے بھی اگر میری نظر میں گناہگار، خطاکار، قصوروار ہیں تو خداوند ان کو بھی اسی معیار پر ادھر پہنچائے گا. ہم بھی دوسروں کے گناہوں اور خطاؤں اور غلطیوں کو وہاں سامنے لانے اور ان کا نشانہ بنانے اور ان کا اشتہار لگانے کی سوچ نہیں رکھیں گے. جیسے خداوند ہمارے گناہوں کو اپنے بیٹے کے خون سے دھو کر ہمیں شامل کرتا ہے، ویسے ہی دوسروں کو بھی وہ شامل کرتا ہے. ہم وہاں ویسا مزاج رکھیں گے جیسا یسوع کا ہے، جو گناہگاروں اور خطاکاروں کو پیار کرتا ہے. ہم مسیح کی جیسی محبت رکھیں گے. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 13 میں اور آیت نمبر 34 میں خداوند یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. جب اس نے ہم گناہگاروں سے محبت کی تو ہم میں اسی کی محبت موجود ہوگی اور ہم دوسرے لوگوں کو گناہگار نہیں دیکھیں گے، ہم ان کو لویبل، محبت کے قابل سمجھیں گے. ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے. جیسے خداوند نے ہم سے نفرت نہیں کی ویسے ہم دوسروں سے نفرت نہیں کریں گے، دوسروں سے محبت کریں گے. اور وہ محبت ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ جو کوئی وہاں ہے یہ خداوند کی مہربانی سے ہے، یہ خداوند کے فضل سے ہے، خداوند کی محبت سے ہے. اس لیے ہم کسی پر اعتراض نہیں کر پائیں گے، ہم خود اس محبت کے بینیفیشری ہوں گے، اس سے مستفید ہونے والے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. تو اگر اس چیز سے جس سے دوسرے، اگر میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگر کوئی اور فائدہ اٹھا لے تو اس پہ اعتراض نہیں بنتا. گورنمنٹ سڑک بناتی ہے سب لوگوں کے لیے اور میں اپنے دروازے کے سامنے بیریئر لگا لوں کہ صرف میری گاڑی اس سڑک سے گزر سکتی ہے، کسی اور کی نہیں، تو یہ بات کسی طور پہ جائز نہیں ہوتی. ہمیں جیسے ہم بینیفٹس لیتے ہیں خدا کے گریس کے، اس کی محبت کے، ہمیں دوسروں کو اگر دیکھیں کہ وہ اس سے انجوائے کر رہے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. اور ہم اس لیے بھی اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ جو محبت ہے وہ گناہوں اور خطاؤں کو یاد نہیں رکھتی. کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط کے 13 باب میں لکھا ہوا ہے، اردو میں الفاظ ہیں، بدگمانی نہیں کرتی. محبت بدگمانی نہیں کرتی. انگریزی میں ترجمہ ہے، لو ڈز ناٹ کیپ دا ریکارڈ آف رونگس، غلطیوں کی، خطاؤں کی کوئی یادگار نہیں رکھتی. محبت، کسی نے خطا کر دی، غلطی کر دی، اس سے کچھ جرم ہو گیا मोहब्बत उसका रिकॉर्ड खत्म कर देती है, जैसे खुदावंद ने हमारे खिलाफ जो हुक्मों की दस्तावेज थी वो अपने खून से मिटा डाली, उसने हमारे खिलाफ जो हुक्म था मौत का उसे मिटा डाला, हमारे गुनाहों को मिटा डाला और उन्हें याद नहीं करता। जबूर 103 में लिखा है कि वो फिर हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता है जितना पूरब से पश्चिम, और इब्रानियों 8:12 आयत कि वो हमारे गुनाहों को याद ना करेगा। वहां हम भी किसी और की खताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, नुकसान जो हमें पहुंचाए गए हैं उनको, उन रवैयों को याद नहीं रखेंगे, इसलिए हमें वहां सब लोग पाक, अच्छे और उम्दा दिखेंगे और हम किसी पर एतराज नहीं कर सकेंगे। और फिर बड़ी बात कि हम खुदा के फैसलों से मुतमईन होंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे खुदा के फैसलों से। कौन है जो खुदा के फैसलों को चैलेंज कर सके? किस में इतनी जरूरत है कि वो खुदा के फैसलों को चैलेंज करे कि खुदा तूने ये फैसला गलत किया है, आइजक को तूने अपनी बादशाही में शामिल किया ये तेरा फैसला गलत है, आइजक को तूने अपना खादम बनाया ये तेरा फैसला गलत है, कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। इसी तरह कोई भी दुनिया भर के लोगों में से, भले वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, जब उसे खुदावंद अपनी बादशाही में दाखिल कर देगा तो यह फैसला सरासर खुदावंद का है, किसी इंसान का नहीं। और उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, रास्तबाजी पर मबनी हैं, उनमें खोट नहीं है, उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुदावंद रास्त है, वो सच्चा और आदिल है और वो गलत फैसले नहीं करता। हमारा खुदावंद किसी की तरफदारी नहीं करता, हमारा खुदावंद किसी से बुग़्ज़ या दुश्मनी फजूल में नहीं रखता, वो किसी बुनियाद पर फैसले करता है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, शागिर्दों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, रसूलों की तादाद 12, उनके नाम आसमानी शहर के बुनियादों में उनके 12 नाम लिखे हुए हैं। उनमें से किसी को यह खुशखबरी नहीं मिली थी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। किसको खुशखबरी दी? डाकू को, क्रिमिनल को, जो अदालत की नजर में, उस मुआशरे की नजर में खूनी था, बदकार था, चोर था, डाकू था, लुटेरा था, और उसे सजाए मौत मिल चुकी थी, लेकिन उसके चंद लम्हे जो उसने खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को पहचान लिया और जान लिया और उससे दरखास्त कर दी, अपनी हैसियत को उसने खुले दिल से कबूल कर लिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हमारी सजा वाजिबी है, मतलब कि मैंने वो जुर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है, मुझे नाजायज सजा नहीं मिल रही। लेकिन इसने, यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, और फिर यीशु को मुखातब करके कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और उसे क्या खुशखबरी मिली? मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। किसी में है जुर्रत रसूल में यह चैलेंज करने की कि वो तो खूनी और डाकू और लुटेरा और बदकार और क्रिमिनल और सेंटेंस्ड, सजा याफ्ता था, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं अपने कम इल्मी में, अपनी नाकस अकल में यह ईमान रखता हूं कि नए अहदनामे के मसीह के सारे शागिर्दों में से सबसे पहले आसमान की बादशाही में वो शामिल था, सबसे पहले उसे बादशाही में शामिल कर लिया गया, इससे पहले कि पतरस और याकूब और यूहन्ना, इंद्रियास और फिलिपस और मत्ती और तोमा, ये सारे जाते आसमान की बादशाही में, वो डाकू, वो सजा याफ्ता मुजरिम, वो मर्डरर, वो किलर, वो रॉबर, वो थीफ, वो बादशाही में पहले मौजूद था। और कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता होगा کہ یہ کیوں ہے، میں نے تو بڑی خدمت تیری کی، میں نے تیرے لیے جان قربان کی، اس نے کیا کیا؟ زندگی کے آخری دو منٹ میں تیرے ساتھ بات کر لی اور تو اس کو یہاں لے آیا؟ نہیں، اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، ہم اس کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم اس پہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ جو خداوند کرتا ہے درست کرتا ہے۔ آئیے ہم ان چیزوں کی پریکٹس یہیں سے شروع کریں۔ ہم باتوں باتوں پہ اپنے دکھوں اور مصیبتوں میں ماتم کرنا، آہ و نالہ کرنا ترک کریں۔ ہم خدا کی بادشاہی میں موجود لوگوں کی حیثیت اور ان کی پوزیشنز اور ان کی موجودگی پر سوال کرنا چھوڑ دیں کہ یہ نہیں وہاں ہوگا۔ فتوے دینے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ نجات یافتہ ہے، وہ نجات یافتہ نہیں ہے، وہ سیوڈ سنر ہے، وہ سیوڈ ہے ہی نہیں۔ ہم یہ بحث چھوڑ دیں، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ کس کو وہ اپنی بادشاہی میں داخل کرتا ہے، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ وہ کسے جہنم کی آگ میں پھینکتا ہے۔ ہم خدا پر چھوڑیں، ہم خود سے فیصلہ کرنا ترک کر دیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔